الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد اللهم صل على آل محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معزز برادران نے اسلام، برادران تشیع، اس وقت دنیا میں عراق کا جو ایشو ہے وہ ایک برننگ ایشو ہے، ایک سلگتا موضوع ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک اسلام ہی کے بیچ سے اسلام کے دشمنوں نے ایک ایسا گروہ پیدا کیا جسے دنیا اس وقت تکفیری گروہ کے نام سے جانتی ہے، اگرچہ اس گروہ کا وجود اور اس گروہ کے وجود کی تاریخ بہت قدیم اور پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے جو اس کا وجود ہے اور اس گروہ کی جو کے جو منفی کارنامے ہیں وہ اپنے نقطۂ عروج پر ہے، وہ تکفیری گروہ ہے، اور یہ تکفیری گروہ خود اسلامی گروہ کے درمیان سے اسلام دشمن استعماری طاقتوں کی پیدا کردہ ہے. قبل اس سے کہ میں اس کی طرف آگے بڑھوں، جو صورت حال اس وقت پیدا ہوئی ہے، ایک تشویشناک صورت حال اور ایک سنگین صورت حال، وہ اسی تکفیری گروہ میں سے ایک گروہ جو ابھی چند مہینوں کی پیداوار ہے، زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، اسے آئی ایس آئی ایل اور آئی ایس آئی ایس کے نام سے جانتے ہیں، دونوں ہی اس گروہ کا نام ہے، یعنی آئی ایس آئی سے کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت. لیوانت وہ ایک ایسا پرانا یعنی کہ ٹرکش امپائر کے زمانے کا ایک اصطلاح ہے اس علاقے، لیکن جس میں اردن بھی آتا ہے، شام بھی آتا ہے، اور کچھ اسی طریقے سے لبنان کے کچھ علاقے آتے ہیں. تو اور آئی ایس آئی ایس اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، وہ سیریا کے نام، اسی لیے اس کو دونوں ہی کے نام سے آپ کو جو میڈیا ہے اس میں اس کا مخفف یا ایبریویشن استعمال ہو رہا ہے. عربی میں اس کو داعش کہتے ہیں، یا دولت اسلامی یعنی برائے عراق و شام، برائے. تو یہ داعش گروہ جو ہے در حقیقت القاعدہ کی ایک نئی شکل ہے، جدید شکل ہے، یعنی اس سے پہلے استعماری گروہ القاعدہ کے عنوان سے کام لیا کرتے تھے. اب اس وقت تازہ ترین صورتحال میں جب وہ پتے ناکام ہو چکے شام میں، تو یہ، لیکن در حقیقت یہ ایک رجت اسلام میں ایک رجت پسند گروہ کی، یعنی رجت پسند فکر کا نمائندہ گروہ ہے. یہ رجت پسند مثلا کہ جو ہر قسم کے ترقی اور تکامل کا مخالف ہو، ہر قسم کے کمال سے نفرت کرتا ہو، وہ اسلام کو بالکل ایک ایسے پتھر کے ایج میں لے جانا چاہتا ہو، اور یہ دراصل ان کی فکر ہمیشہ اس قسم کی، اسلام میں جو بھی فکر پروان چڑھی ہے وہ اسلام دشمنوں نے پروان چڑھائی ہے، اور اس ویژن کی بنیاد پر کوئی گروہ کھڑے کرتے ہیں، تاریخ آج سے نہیں، چونچہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں خوارج کے اس سے، کہ دراصل امام علی علیہ السلام در حقیقت اسلام کی جو اسلام کی گاڑی کو یا اسلامی تاریخ کی موومنٹ کو آپ بالکل رسول خدا کی طرف پلٹا رہے تھے، جو انحرافات آ گئے تھے دشمنوں کی ریشہ دوانیاں سے، دیوانیوں کے سبب، ریشہ دوانیوں کے سبب، یا اپنوں کی بے وفائیوں اور حماقتوں کے سبب، تو امام علی بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی تمدن کی جو گاڑی ہے اس کو ان قدروں کی طرف پلٹایا جائے جو حقیقتاً رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد فراہم کی تھی. چنانچہ اس وقت جو مفاد پرست طبقہ تھا، جو جس کے اپنے مفادات تھے، جو اسلامی معاشرے پر آلریڈی تسلط حاصل کر چکا تھا اور اس کی حکمرانی کی باغ ڈور ہاتھ میں لے رہی تھی، لیکن بدرجہ مجبوری مسلم عوام کے دباؤ پر ان کو دست حضرت علی کے ہاتھ میں دینا پڑا تھا. اگرچہ امام علی علیہ السلام کا تو یہ حق پہلے ہی تھا، جیسا کہ ہم شیعوں کا نقطہ نظر ہے اور ظاہر قرآن، احادیث اور روایت سے ایک منصوص بات ہے، لیکن بہرحال اگر وہ حق اس وقت نہیں دیا تھا تو عوامی پریشر پر آ کے ان کو دینا پڑا تھا. تو اب جب عوام بالکل امام علی کو خلافت سونپنے کو موڈ میں آ گئی تھی، تو یہ ان سے نبردازمہ تو نہیں ہو سکتے تھے. اس مسئلیت کے دیکھتے ہوئے انہوں نے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی، وڈرا کیا، لیکن خوارج جیسے گروہ کو پیدا کر دیا اسلام دشمنوں نے. اور اسلام دشمن کے علائق کار گویا کہ مفاد پرست طبقوں نے خوارج جیسے گروہ کو پیدا کر دیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح کی اسلام کی بات کی جو انسانی تمدن کو اسٹون ایج میں لے جانے کی بات تھی. اور یوں ثابت اس سے یہ کرنا تھا کہ اسلام کی جو آمد ہوئی ہے سرزمین پر، چاہے وہ رسول خدا کے زمانے میں یا امام علی کے زمانے میں یا اس وقت دور جدید میں، وہ اسلام دراصل انسانیت کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے. یہ اس طریقے سے پیغام دینا چاہتا ہے. تو یہ داعش یا آئی ایس آئی ایل یا آئی ایس آئی ایس یا القاعدہ یا طالبان یا اور طالبان کی جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، مثلا جیش العدل اور اسی طریقے سے وہ مالک ریگی کا جو گروہ تھا، یہ یہ سارے گروہ گویا کہ اسی ایک بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کی ایک غلط تعبیر پیش کرتے ہیں جو حقیقی تعبیر نہیں ہے. وہ اسلام حقیقی کی تعبیر نہیں ہے، وہ ایک منحرف شدہ اسلام کی تعبیر ہے. وہ ایک ایسے اسلام کی تعریف ہے جس میں اسلام کے دشمنوں نے تصرف کیا ہے، اور اس کو منحرف کیا ہے، اس میں رد و بدل کی ہے، اور اس کو وہ اسلام نہیں ہے جو وحی الہی کے ذریعہ رسول خدا پر نازل ہوا. اس کی تصویر بگاڑی گئی ہے. یہ وہ اسلام ہے جس کی تصویر بگاڑ دی ہو دشمنوں نے اور سادہ لوہی میں آ کر کے مسلمانوں نے خود. تو یہ جو عراق، یہ جو مسئلہ داعش کا ہے، یہ اصل کی سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جس گروہ سے اٹھے، ایکچولی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنی، یعنی اس وقت جو کارپوریٹ میڈیا ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ گویا یہ سنی حضرات ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سنیوں کا اوور آل اس سے کوئی تعلق نہیں، اس اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ سنی منابع میں بھی آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جنگ کے کچھ اصول و قوانین ہیں، مثلا ایسا نہیں ہے کہ دوران جنگ جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے کہ خواتین کا بچوں کا احترام جو غیر متحارب ہیں یعنی جو جنگ یعنی پریکٹیکلی انوالو نہیں ہے چاہے وہ معبد ہوں کے لوگ ہوں گرجا گھر ہوں اگر وہ پریکٹیکلی انوالو نہیں ہے جنگ میں تو ان تمام کو امان ہے جنگ کی صورتحال ان پر حملہ کرنا حرام ہے اور یہ سب اس بات پر اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ بھائی پھر یہ کہ جنگ کے دوران کسی نامحرم سے یعنی جنسی اعتبار سے سوء استفادہ کرنا اور غلط یہ ان کے یہاں بھی بالکل اسی طریقے سے غلط ہے جس طریقے سے حقیقی اسلام نے بتایا ہے رسول خدا نے بتایا ہے ہمارے ائمہ اطہار نے بتایا ہے سنی اسلام میں بھی لیکن اس بات کو خود اسلام دشمن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سنی ہیں تاکہ شیعہ سنی پورے گلوبل لیول پر ایک شیعہ سنی یعنی کہ مہازارائی جنم دی جائے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ شیعہ چونکہ اس وقت اقلیت میں ہیں تو یہ اکثریتی گروہ کو ان کے خلاف لا کر کے اور اس طریقے سے ان کا قلعہ قمع کر دیا جائے تاکہ اگر شیعہ فزیکلی زندہ نہیں رہیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ پھر جو حقیقی اسلام ہے اس کے نام لیوا حسین کے کربلا کے ائمہ اطہار کے جو حقیقی اسلام کے نمائندہ ہیں ان کے لوگ تو ایک طرح سے ہمیشہ اس بات کی تردید کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں کوئی البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ظاہر ہے کہ شروع میں چونکہ ایک حقیقی اسلام سے ایک منسوس اسلام سے انحراف کیا گیا تو اس کا تجربہ کر کے ہم نے دیکھ لیا مسلمانوں نے دیکھ لیا تجربہ کر کے مسلمانوں نے تجربہ کر کے اس کا دیکھ لیا کہ ایک منسوس قیادت جو ہے نا وہ قیادت کا مسئلہ ہے قیادت مسلمانوں میں ایک بہت بنیادی چیز ہے قیادت کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو مسلمان 1400 سال سے غلام ہیں مثلا یہ ہے کہ قیادت ہمیشہ الہی ہوگی اور وہ منسوس ہوگی وہ مسئلہ شروع میں حل نہیں کیا گیا بلکہ رسول خدا نے جس طریقے سے حل کرنے کا بتایا تھا اس سے انحراف کیا گیا تو اس کا نتیجہ مسلمانوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ یزید جیسے لوگ حکمرانی پر یعنی کہ اسلامی معاشرے کے سربراہ بن گئے ان کے حکمراں بن گئے اور جو کچھ ہوا اور جس انداز ہوا اسلامی معاشرہ جس طریقے سے ہوا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ خود عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ تھے بظاہر مثلا کہ ظاہر ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اور عدالت ان میں تھی چانچہ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے اور خود دستبردار بھی ہوئے مطلب کہ یہاں تک کہ باغ فدق کو بھی واپس کیا جا کر کے ان کے مستحقین کو باضابطہ جا کر کے جو بھی تھے اس وقت امام باقر تھے یا جو بھی تھے ان سے جا کر کے ریکویسٹ کی لیکن ایک بات انہوں نے بہت اہم کی کہ اگر دنیا اپنے تمام تر صفاق حکمرانوں کو لے کر کے حکام کو لے کر کے آئے اور ہم بنو امیہ صرف اپنا ایک حجاج بن یوسف کو سامنے لائے تو وہ سب پر بھاری ہو گیا تو اس طریقے سے انہوں نے صفاقیت کو بے نقاب بھی کیا یعنی بظاہر مقصود ان کا یہ نہیں تھا کہ حجاج بن یوسف کی تعریف کو حجاج بن یوسف اور یہ ایک جو صفاقیت کا ایک ایسے اسلام کی تبلیغ جو صفاقیت کا مظہر اس کو بے نقاب بھی کیا تو خود بخود ایسے بھی تو یہ داعش گروہ یا القاعدہ گروہ یا طالبان گروہ یہ تمام تر جو ہے وہ ایک ایسے گروہ سے یعنی کہ اسلام دشمنوں نے ایک ایسے گروہ سے پیدا کیا جن میں حقیقی اسلام کے جو حقیقی نمائندے تھے ان کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ویژنری نہیں تھے मतलब मैं ये हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ कि वो अकीदत उनसे नहीं रखते हैं, ज़ाहिर है कि रसूल खुदा सुसम के, बल्कि उनको दुश्मनों ने खुद लाइन रखा। मैं आपको एक बहुत सादे से, एक बार मैं जब ईरान का इनकलाब आया तो इंडिया के एक दोबंद आलिम थे, उनका नाम मौलाना मंजूर अहमद नुमानी था, उन्होंने एक किताब लिखी ईरान के इनकलाब के, ईरानी इनकलाब की मुखालफत में, और मौसूफ़ ने, हालांकि आलिम दीन थे, मौसूफ़ की उनकी महाजाराई थी मौलाना मौदूदी से भी, चुनाचे मौलाना मौदूदी पर भी उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम आयद किए थे, और उन्होंने खिलाफत व मलूकियत के लिखने पर बड़ा शोर मचाया था, और ये कहा था कि अब मौलाना मौदूदी जो है वो महदवियत महदी होने का दावा करने वाले। अच्छा, जब वो तो ईरानी इनकलाब के की आमद से पहले की बात थी कि ये ख़ुद अपने ही एक गोया के अहले सुन्नत वल जमात में जो एक इस्लामी शख्सियत थी उसके ख़िलाफ़ वो तरह तरह के थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी ईरानी इनकलाब पर, उसमें अव्वल तो उन्होंने जो सबसे कड़ी हरकत की वो ये कि कंप्यूटर का तसरुफ की तसरुफ करदा एक तस्वीर उसमें उन्होंने शाये की इमाम की, जिसमें इमाम को क्लीन शेवन और नेक टाई लगाए हुए, और झूठ बिल्कुल लिखा, एक आलिम दीन ये बिल्कुल झूठ लिखता है कि ये फ्रांस में जब इमाम थे तो वो इस ड्रेस में थे। मैंने वो अपनी आंखों से देखा कि उनकी किताब पे ये तस्वीर थी। जब एक और बहुत बड़े अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन, जिनकी मैंने एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी, यानी इनकलाब की आमद से पहले ही पढ़ी थी, कि मुस्लिम दुनिया पर इस्लाम के उरूज ज़वाल का, यानी आलमी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज ज़वाल का असर, तो उसमें उन्होंने नवाब सफवी की तहरीक की बड़ी तारीफ व तौसीफ की थी जो ईरान में उस वक्त चल रही थी इस्लाम के लिए। लेकिन वही हज़रत उस पर मुकदमा लिखते हैं और इमाम खुमैनी के इनकलाब की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये एक शिया इनकलाब है और शिया बिद्दती हैं, शिर्क है, और ये जब हो गई वो किताब। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी दिनों में अपने, मेरा ख्याल है कि उनका तीन चार साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ, ज़्यादा नहीं, तो पिछले 10 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी, अल मुर्तज़ा किताब, वो किताब मैंने ली और बिलिस्तियाब पढ़ी। उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने शियत के इससे नुक्ते नज़र से तो इख्तलाफ़ किया ही था, ज़ाहिर है कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसी अहादीस दी जिसमें अहले बैत के मुतल्लिक, अहले सुन्नत के मनाबे में अहले बैत की अहमियत को उजागर किया था। फिर उन्होंने शुरू ही में एक बात ऐसी लिखी कि जो अहले बैत अथार हैं वो दीन के हकीकी वारिस हैं। अब जब एक आलिम दीन जब ये लिख देता है कि अहले बैत अथार ही दीन के हकीकी वारिस हैं, फिर रह क्या जाता है? इसका मतलब कि जब हकीकी वारिस थे तो हकीकी वारिस को उसका हकीकी हक नहीं दिया गया। ये बिल्कुल उनकी लेटेस्ट तहरीर है, मतलब कि इंतकाल से पहले, अलमुर्तज़ा के अनुमान से। शायद आपको बहुत सारी इसमें मिल जाए, मेरा ख्याल है कि वो इस्लामिक रिसर्च एकेडमी होती है वहाँ फेडरल बी एरिया में, उन्होंने ये किताब उनकी छापी है या किसी और ने छापी है, बहरहाल इतनी मोटी किताब। तो अब देखिए कि ये जो खवारिज का फितना उठा था वो फितना ही इसलिए था कि दीन के हकीकी वारिसीन की सही शनाख्त नहीं की गई थी और दीन के हकीकी वारिसीन का साथ नहीं दिया गया था। मतलब सबसे पहले तो उसको यही कि मौला अली को, मतलब जो लोग उस वक्त, मैं हमेशा ये अक्सर अहले तसन्नुन से भी कहा है कि, और कहता रहता हूँ अब भी कहता हूँ, कि जिन लोगों ने रसूल खुदा की वफात के बाद यानी कि इमाम अली की खिलाफत के ताल्लुक से रसूल खुदा की मनसूस, वाज़ह मनसूस हिदायत का इनकार किया, वो गोया के तारीख़ के کہ غلط تاریخ کی غلط روش پر تھے, رانگ ٹریک آف ہسٹری پر تھے. تو یہی مسئلہ ہوا کہ کافی دنوں تک رسول خدا کے بعد اور میں نے کہا امام زمانہ کی غیبت کے بعد اہل سنت نے جو دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے نقصان اٹھایا, کہ ظاہر ہے کہ استعمار دشمن تو دراصل اسلام کے حقیقی دشمن ہیں, اسلام کی خالص فکر کے دشمن ہیں. وہ خود مسلمانوں سے اس خالص فکر کا گلا گھوٹواتے ہیں اور پھر بعد میں خود مسلمانوں کو مطعون کرتے ہیں اور ان کا تعاقب کرتے ہیں اور ان کو ان کے فزیکل سروائیول کے بھی دشمن ہوتے ہیں. مطلب یہی ہوا کہ بعد میں ایسی اسلامی تحریکیں اہل تسنن سے بھی جو چلیں, جنہوں نے یہ کہا کہ معاشرے کو اسلام کی طرف برگشت ہونا چاہیے اور اسلام کو حکمراں ہونا چاہیے معاشرے پر, تو بعد میں ان کو اس طریقے اس وقت بھی ان کی گویا کہ ان کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرتے رہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان میں اتنی یعنی کہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے, جو صلاحیت ہوتی ہے, اصل میں حقیقی نمائندوں کو تسلیم کرنے سے اور حقیقی اسلام کی معرفت کرنے سے, حقیقی اسلام کی معرفت اور حقیقی اسلامی منصوص ائمہ کی مکمل اطاعت اور پیروی میں اسلام ایک خود ایک سیلف کریکٹیو میجرز دیتا ہے. یعنی وہ اسلام میں ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اگر کبھی وہ انحراف کی طرف دوچار ہوں تو اس کے اندر ہے کہ وہ خود ٹریک پر آ جائے. مثلا ائمہ کی ایسی تعلیمات ہیں کہ کس طریقے سے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے جو تحریکیں اہل تسنن میں اٹھیں انہوں نے محنتیں تو بہت کی لیکن ہمیشہ دشمنوں کی یعنی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئیں. اور چنانچہ واضح مثال ہے کہ اخوان المسلمین عالم عرب کی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی, بہت زبردست تحریک تھی اور انہیں بڑی محنتیں کی اور بڑے بڑے چیلنجز کو قبول کیا, لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں دنیا پر حکمراں انہوں نے بآسانی ان کو مینج کر لیا, خود ان کو انگیج کر دیا اور وہ اپنے مقاصد میں یعنی اپنے اصلی ہدف میں کہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرے کو حقیقی اسلام کی طرف برگشت ہونا چاہیے ناکام ہوئی. پھر ان کو کبھی اس بات کا سوچنے کے لیے موقع نہیں دیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہماری کوششیں ہم محنت کرتے ہیں جب آ رہی تھیں, جب ہی سوچا مثلا کہ اخوان نے 60 میں 60 کی دہائی میں سید قطب شہید نے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, اسلام میں عدالت اجتماعی کے عنوان سے ایک کتاب لکھی, آخر میں اپنا نچوڑ تھا, اس میں انہوں نے 7واں باب قائم کیا اور وہ تمام باب میں لکھا کہ اصل میں اسلام کے درمیان جو رکاوٹیں رہی ہیں شروع سے وہ مسلم ملوکیت ہی رہی ہے, یعنی مسلم حکمراں رہے ہیں جو اسلام کے مفادات جو حقیقی اسلام میں رکاوٹ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ جن سے شاکی ہیں وہ خود خلیفہ ثانی سے شاکی ہیں, کلیئر کٹ. وہ جب میں نے وہ کتاب, ایک کتاب اس کی یعنی کہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو کر کے آئی ہے, اس کی اردو میں ترجمہ ہے, ایک بہت ہی بڑے ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی, انہوں نے کیا ہے اردو میں ترجمہ. تو اس میں وہ مترجم جب اس 7ویں پر آئے ہیں تو انہوں نے نوٹ لکھا ہے کہ مصنف کے 7ویں باب سے 7th چیپٹر سے مترجم کا اتفاق نہیں ہے. اسی طریقے سے مولانا مودودی نے جب ایک پاکستان میں یا بر صغیر میں اسلامی معاشرے کے اسلامی حکومت کے حکومت الہیہ کے قیام کی بات کی تو ان کو جو کچھ پاکستان میں تجربات درپیش ہوئے بعد میں اس کا نچوڑ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں لکھا. خلافت و ملوکیت کوئی شیعت سے متاثر ہو کر کے نہیں لکھی گئی تھی کتاب, बल्कि वो इसलिए लिखी गई थी कि उनको जो तजुर्बात हुए तो सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर क्या बात है कि इतनी मेहनतें करते हैं और ख़ुद ये मुस्लिम हुक्मरान आड़े आ जाते हैं। तो उन्होंने लिखी और उसमें यही बात महासल यही था कि तारीख़ के रोज़े यानी इस्लामी तारीख़ के अव्वल से जो है ना ये गैर मंसूस और यानी कि गासिब मुस्लिम हुक्मरान जो हैं उन्होंने ये किया। और मौलाना मौदू ने भी खलीफा सानी के दौर में ही मुलुकियत की जो रिशा दवानियाँ थीं और बनू उमैया ने किस तरीके से खलीफा सालिस को अपने यरगमाल बना लिया था उसका तस्करा किया है, जिस पर खुद सुन्नी दुनिया में बड़ी बरहमी हुई और मौलाना मौदूदी को शिया किया गया। हालांकि उनका शियत से कोई तल्लुक नहीं था, कोई शिया फ़लसफे से, या मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौलाना मौदूदी एक क्लासिकल सुन्नी थे जो क्लासिकल यानी कि सुन्नी अकीदे पर ईमान रखते थे। वो यानी कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वत के कायल थे और यही चारों खुलफा की हुकूमत को वो अपने लिए समझते थे कि वही मिसाली है इस्लामी माशरे के क़याम के लिए। अलबत्ता खलीफा सालिस के दौर में जो कुछ हुआ वो कहा कि इस ज़माने में बनू उमैया ने पेनिट्रेट किया और खलीफा सालिस को यरगमाल बना लिया और उनको उसके ज़ेर असर आ गए। तो ये एक क्लासिकल सुन्नी थे, सुन्नी मुफक्किर थे, उनका शियत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सुन्नी दुनिया ने इस किताब के लिखने पर एक हंगामा खड़ा किया और उनको शिया कह कर के ख़ुद उनको उनकी जमात और अहले तसन्नुन में आइसोलेट कर दिया, तनाई के से दोचार कर दिया। तो ये तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इस किस्म की जो खवारिज का जो फितना उठा था इसके मुकाबले में बहरहाल वैसे नहीं थे ये लोग। ये मसलन के सैयद कुतुब की हसन बन्ना से ईरानी उलमा से काफ़ी खतु किताबत रहती थी, ख़ुद मौलाना मौदूदी की भी मुलाकात रही इमाम खुमैनी से हज में। मौलाना जब इनकलाब आने से कुछ दिन पहले मौलाना मौदूदी के पास अपने नुमाइंदे भेजे, अलबत्ता इमाम खुमैनी ने इमाम यानी मौलाना मौदूदी को समझाया कि ये बहुत ही गोया के सऊदी अरब जो है जिस ऐसे लोग इस्लाम में ज़बरदस्त रुकावट हैं, सऊदी अरब की शाही हुकूमत, ये तमाम अरब ममालिक की, लिहाजा आप जैसे लोगों को इनके ख़तरात से आगाह करना चाहिए। ये मौलाना मौदूदी के वो ख़त महफूज है, अब भी बाज़ जगह शाये भी हुआ है, फ़ारसी में भी उसके मतन ये हैं। तो ये जो मसला है वो यही मसला है कि इस्तेमार और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने चंद यानी कि स्टडी करके देख लिया है कि सुन्नी शिया में इख्तलाफात क्या है, उनको इसकी यानी कि मालूम कर लिया है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हकीकी इस्लाम की तरफ पलट करके अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें, लिहाजा इनको सुन्नी और शिया इस्लाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार लाया जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजारा कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की क़ुव्वत ज़ायल हो जाए आपस में लड़ते हुए और वो इंगेज रहें और हमारे जो अहदाफ व मकासिद हैं खुदा के ख़िलाफ़, खुदा के रसूल के ख़िलाफ़, खुदा के दीन के ख़िलाफ़ वो बरूए कार रहे और हमारा मादी फ़लसफ़ा गालिब रहे और वो जो ख़ातिमुल अंबिया जिस दीन को लाए थे हज़रत मुसले और जिसकी जिसका तसलसल इमाम अली के साथ अइम्मा अथार से जिसके तसलसल को आगे जारी रखते हैं वो कभी भी दुनिया पर हुक्मरान ना होने पाए। चाहे इसमें उनको अब तक कामयाबी मिली और उसमें कोई उनको परेशानी नहीं हुई, उन्होंने ताकत के ज़ोर पर, साजिशों के ज़ोर पर, लेकिन 1979 में उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड एक अजीब वाक़या हुआ कि एक वो जिसकी तरफ से कोई तवक्को नहीं रखते थे कि कोई इस्लाम अपने सियासी हकीकी इस्लामी और सियासी अहदाफ के साथ मैदान में आएगा और कामयाब हो जाएगा, वो ईरान का इस्लामी इनकलाब था और उन्होंने देखा कि ये शिया कॉर्नर से आया तो उनके लिए एक बिल्कुल वो उनके सारी जो एनालिसिस थी वो सारी अपसेट होकर रह गई और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हुए और फिर उन्होंने उसके लिए पहले तो बराह रास्त जंग की, लेकिन वो देख चुके कि हमने अगरचे प्रॉक्सी वार लड़ी थी, वो खुद अटैक नहीं किया था, तबस में एक बार अटैक किया था, उसका अंजाम उन्होंने देख लिया, फिर इराक के ज़रिया उन्होंने फुल पुश्त पनाहें की, पूरी दुनिया से उनकी पुश्त पनाहें की, अरब ममालिक के रजत पसंद हुकूमतों से उन्होंने पुश्त पनाहें की, जिसकी वजह से वो ये मिला। तो अब जब ये दाइश जो है या ISIL है जो अलकायदा है, इन्होंने सोवियत यूनियन के ज़माने में इनको इस्तेमाल किया पूरे तौर से, इस फिक्र को कि जिहाद किया जाएगा और जिहाद रूस के ख़िलाफ़ किया जाएगा, उनका उसको पड़ा कि सोवियत यूनियन टूट गया, इसलिए कि उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन था, चूँकि इस्लामी इनकलाब अभी ताज़ा आया था 1979 में, और ये 1978 में उन्होंने किया था तकरीबन, और इनकलाब आया तो उससे पहले इन्होंने उसके बाद से इसको कर लिया, और उसमें जो इन्होंने सुन्नी जिहादियों को इस्तेमाल किया उससे उनको बड़ी कामयाबी हुई, और वो पारा पारा हो गया। पारा पारा होने के बाद जब सोवियत यूनियन पारा पारा हो गया तो अफ़गानिस्तान में फिर इन्होंने इनको भी जिन जिहादियों से काम लिया तो वो चाह रहे थे अपने तौर से फिर एक हुकूमत, उनको भी साजिशों के ज़रिए तकसीम कर दिया, फिर हर जगह एक दहशतगर्द उनको उनवान, कल तक उनको जिहादी कह रहे थे, उनको हुर्रियत पसंद कह रहे थे, और बाद में उनको जंगजू और दहशतगर्द कह के इंतहा पसंद कह करके तआक़ुब किया। और हम और आप सब वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है, या बर सग़ीर में, या बिलखसूस पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में जो, वो उसी का शाख़साना है, और आलम अरब में जो दहशतगर्दी हो रही है वो ये है। अच्छा, अब ये देखिए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद व अज्जल फरजहु। अच्छा, ये देखिए कि ये भी अजीब बात है कि जब दुनिया बाईपोलर वर्ल्ड थी, दो कुतबी दुनिया थी, यानी अमेरिका था एक तरफ उस दुनिया का कैपिटलिस्ट दुनिया का सरबराह, दूसरे कम्युनिस्ट दुनिया का सरबराह जो था वो था रूस सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के ज़माने में अमेरिका ने एक तरफ तो इन इस्लामी तहरीकों के जो चल रही थी इख़वान या उनके उनकी बढ़ते हुए असर रसूख के ख़िलाफ़ साजिशें भी करता था, उनको रोक भी देता था, लेकिन उनसे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट फिलॉसफी के ख़िलाफ़ सुए इस्तफादा भी करता था, उनसे शराकत भी करता था। चुनांचे ये ग्रोह राइटिस्ट के उनवान से जाने जाते थे, जो लेफ्टिस्ट के बहुत बड़े मुखालिफ हुआ करते थे। उनका सारा दारोमदार और सारा फोकल पॉइंट, नुक्ता इर्तकाज जो था, वो सोवियत यूनियन की दुश्मनी पर मबनी था, जो कि अमेरिका के मुफाद में जाता था। अब इसकी वजह से भी बड़ा कन्फ्यूजन था। चुनांचे ये जो हमारा शाम है ना, शाम, ये उस ज़माने में शाम हुआ करता था क्या कहते हैं, एक तरह से सोवियत यूनियन का अलाई बशारुल असद के वालिद हाफिज़ुल असद, और सोवियत यूनियन के, इसलिए कि अमेरिका और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की जो इंसाफियां थीं और जो जुल्मो जौर था और जो साजिशें थीं, उसमें से बहरहाल एक ग्रोह मुकावमत करता था उसके मुकर, और उससे कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन से उससे इर्तबात एक लाजमी तसव्वुर करता था, इसलिए कि उस वक्त ईरान का इनकलाब आया ही नहीं था कि जो बताता कि नहीं ला शर्किया ला गर्बिया का तसव्वुर नहीं था, और कोई ऐसी इलाही क़ियादत मजबूत नहीं थी जो दोनों के माबैन एक तीसरा नुक्ते नज़र हकीकी इस्लाम के ज़ेर साया पेश करता कि जो लोगों के लिए काबिल इत्मीनान होता और जो लोगों को मुतमईन कर पाता, ऐसा नहीं था। चुनांचे हुआ ये है कि अब शाम में इन्होंने किस तरीके से इस्लामी ग्रोह को इस्लामी इंतहा पसंद बनाया, दहशतगर्द बनाया है। खुद इख़वान जो कि फ़लस्तीन में हमास के नाम से, वो भी इख़वानी का ग्रुप है, वो मुकावमत कर रहा था। अब इन्होंने बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट जो है बहुत ही पेचीदा और नाजुक स्ट्रेटेजी तैयार की। हुआ ये था कि 80s की दहाई में, बिल्कुल आवाय में, इख़वानुल मुस्लिमीन के 300 अरकान, ज़ाहिर है कि राइटिस्ट का जो हमेशा एक अप्रोच होती थी, जो उनका विजन था, वो हमेशा एंटी सोवियत यूनियन होता था, या जो भी एंटी सोवियत यूनियन का अलाई हो उसके खिलाफ, उसको इस्लाम दुश्मन समझते थे, वो कहते थे कि ये देहरिया हैं, ये खुदा को नहीं मानते हैं, और उसके मुकाबले में वो अपना नेचुरल अलाई तसव्वुर करते थे अमरीकन को। क्या भाई, ये कम्युनिस्ट दुश्मन के मुकाबले में हमारे फितरी दोस्त, फितरी इत्तेहादी और फितरी हलीफ हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मुगालता था राइटिस्ट इस्लाम पसंदों का, एक ज़बरदस्त कन्फ्यूजन और एक पैराडॉक्स तजाद था ये। भाई इस्लाम जितना सोवियत यूनियन के यानी कम्युनिस्ट फलसफे से मुतसादिम है, उससे कहीं ज़्यादा जो है कैपिटलिस्ट फलसफे यानी कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से मुतसादिम था, लेकिन उसको अपना नेचुरल अलाई समझना ये खुद एक मिसकंसीव्ड नोशन था, एक गलत अपने तौर से गलत मफरूजा पर मबनी इस्लामी सोच थी उनकी। चुनांचा चूँकि हाफिज़ुल असद इसलिए थे तो चुनांचा इन्होंने कुछ ऐसे यानी वो लेफ्टिस्ट दुश्मनी पर मबनी कुछ ऐसे इकदाम किए जिसको जाहिर है कि हाफिज़ुल असद ने बर्दाश्त नहीं किया। और उस वक्त हमस में 300 कहते हैं कि 300 इख्वानी जो है वो हुकूमत से क्लैशेस में मारे गए। ये उस वक्त की मीडिया पर बात आई बहुत, और इसको उस वक्त की मीडिया ने, जबकि ईरान का इनकलाब भी आ चुका था, तो उस वक्त के वेस्टर्न मीडिया ने जिन पर ज़ाहिर कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट्स के कब्ज़ा, उन्होंने खूब इसको हाईलाइट किया। तो उस ज़माने में ईरान को कहा कि ईरान क्यों नहीं बोल रहा है, उनके खिलाफ क्यों आवाज़। हालांकि ईरान का तो अभी नया नया इनकलाब आया था 80 के बिल्कुल अवायल में, ज़ाहिर है 79 में तो फरवरी 79 में इनकलाब आया ही था, और 80 के अवायल में ये बिल्कुल वाकया हुआ था हमस के इलाके में। तो ये उस अब उसी तारीख को लेके वो इख्वान थे जो बशारुल असद को भी उसी हवाले से इख्वानियों के एलिमेंट्स को, अनासिर को बशारुल असद के ख़िलाफ़, वो एक तारीखी वाकया वो था, वो दुश्मनी को फिर उन्होंने उनके अंदर बीज बोया नफ़रत की उससे। और ये इख्वान का ग्रोह था जो जिबहुन नसरा का दो पैदा किए, एक तो फ्री सीरियर आर्मी किया जो सेकुलर अनासिर को मिला करके बशारुल असद, दूसरा जो इन्होंने पैदा किया वो इस्लामी इस्लाम पसंद अनासिर को, यानी इख्वान के इख्वानी अनासिर को ये किया का, और याद दिलाया कि देखो 1980 में किस तरीके से इसके बाप ने भी तुम्हारे खिलाफ़ दुश्मनी की थी और तुम्हारे 300 लोगों को मारा था और तुम मारे गए थे, चुनांचे उनको उठाया दोनों चालों से। जिस तरीके से यानी कि जहाँ इन्होंने अलकायदा को आलम अरब में खड़ा किया ईरान के इनकलाब की दुश्मनी के लिए, शिया दुश्मनी के लिए, वहीं सद्दाम जैसे सेकुलर बासी अनासिर को भी इन्होंने खड़ा किया, और फिर एक मुकाम पर दोनों को मुत्तहिद कर दिया। यानी आप देख रहे हैं कि इराक़ में इस वक्त रिपब्लिकन आर्मी के बाकी मानदा लोग और ये दाइश मिल करके गोया के मिल करके कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस वक्त जो इन्होंने कोशिश की है मोसल पर कब्ज़ा करने के कर लिया है, तो ये दोनों की सुन। इसी तरीके से शाम में इन्होंने जिबहुन नसरा इख्वान का ग्रो और फ्री सीरियन आर्मी दोनों ने मिलकर के ये कार्रवाई की। ये आप बिल्कुल समझें कि जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये दोनों ग्रोह को मुत्तहिद कर देते हैं, हत्ता कि सेकुलर अनासिर को भी मिलाते हैं और ये भी मिलाते हैं। तो हकीकी इस्लाम से जो इनको ख़तरा था वो इसका उन्होंने इस तरीके से शाम में नाकाम हो गए, शाम में बुरी तरह नाकाम हो गए। उन्होंने शाम की आवाम उठ खड़ी हुई, फिर शाम में जो फौज थी, हालांकि वो खुद बहुत मजबूत फौज थी, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल ऐसा यानी कि हैंडीकैप कर दिया था, माजूर कर दिया था कि बड़े बड़े लोगों के अंदर घुस करके ये कितने जनरलों को और कितने बड़े बड़े खुद बशारुल असद के कितने अजीज़ वज़रा को, करीबी रिश्तेदार वज़रा को उड़ा दिया था बिल्कुल। यानी कि उन्होंने जो टेबल क्लॉथ बिछाई थी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बशारुल असद मीटिंग करने जा रहे थे बहुत हसास, उसमें किस तरीके से वहाँ के यानी कि बावर्ची को हायर करके कुक को उन्होंने हायर किया था, और उसके ज़रिए एक बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सप्लोजिव से तैयार करदा टेबल क्लॉथ बिछाया था, और फिर उसकी रिमोट कंट्रोल तैयार कर रखी थी जिससे जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे उड़ा दिया। इत्तफाक से उसमें बशारुल असद नहीं थे तो बच गया, वरना बड़े बड़े लोग मारे थे, बड़े बड़े मारे टेबल क्लॉथ में वो तैयार किया। आप कैसी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड ये तैयार करते हैं। बहरहाल इतनी ज़बरदस्त आर्मी थी जो बहरहाल शाम जब लिबनान में सूरत हाल बिल्कुल फसाद की हो गई तो ख़ुद सीरिया ने अपनी फ़ौज भेजी और 30,000 फ़ौज और उससे कंट्रोल पाए थे। तो सीरिया की कोई फ़ौज मामूली नहीं, इसलिए कि सीरिया की फ़ौज हमेशा बरसरे पैकार रही इसराइल से, चाहे सीरिया की हो या मिस्र की हो, और ये हमेशा लड़ते रहे ना, 67 की जंग में भी रहे, 73 की जंग में रहे, उससे पहले भी लड़े, और इस वजह से सीरिया की फ़ौज एक मजबूत फ़ौज थी। लेकिन दहशतगर्दी का वो प्लान तैयार किया मगरिब ने इन रजत पसंद हुकूमतों से मिलकर, सऊदी अरब, कतर, टर्की के इन लोगों से मिलकर ऐसा किया कि बिल्कुल उनको माजूर कर दिया। लेकिन बहरहाल के इस तरीके से ये हुआ कि पहले बशार असद वगैरह इस बात के कायल थे कि अमेरिका से हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं और मगरिब को हम बिला वजह जानते थे कि हम, लेकिन बहरहाल वो कंडोलीज़ा राइस ने उसके पहले दौरा भी किया था अपने ज़माने में, जबकि ये जहाँ तक मशवरे की बात थी, जो मसलन के ईरान के इनकलाब के जो सही रहनुमा थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका कभी भी काबिल एतमाद नहीं हो सकता था, लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी, उनको ये हक भी था कि वो एक अलग मुल्क हैं और ज़ाहिर है कि उनकी कदरदानी तो की जाती थी इसराइल के ख़िलाफ़ जो उनका मौक़िफ़ था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि वो कहते थे नहीं साहब, हम बिल्कुल अभी क्लैश इससे नहीं मोल ले सकते हैं, तो इस मामले में ज़ाहिर है कि उनको आज़ाद थे, वो एक आज़ाद मुल्क हैं, वो आज़ाद कभी ये नहीं कहा। लेकिन उसका वो जो है ना, फ़ारसी का एक की ज़रबुल मिसल है कि उदू शर्री बरंगेज़द के खैर माँ दरान बाशद, कि उदू ऐसा शर बरंगेख्त करता है, ऐसा भड़काता है कि उसमें हमारे लिए खैर होती है। चाहे ये जो कार्रवाई इस्तेमार ने की और इतना, तब फिर उन्होंने एक्सपर्टीज़ की मदद तलब की कि हमें चाहिए आपकी रहनुमाई चाहिए, और फौरन ईरान के डिफेंस मिनिस्टर वहीदी थे, उन्होंने फौरन कहा कि हम बिल्कुल आपको हर तरह की जो जो ये एक्सपर्ट अपने मशवरे से नवाजेंगे, और वो दिया उन्होंने, खुल करके दिया बगैर किसी पूरे, कहा कि यह हक़ है किसी मुस्लिम मुल्क का कि अगर हम उनको सही मशवरा दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया और इसका ऐलान भी किया, उसको छुपाया भी नहीं। अलबत्ता यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी कोई पासदारान इंकलाब या ये नहीं भेजा, एक्सपर्टीज़ की हद तक उनको आदमी दिए, ये उनको मशवरा दिया, उनको ट्रेनिंग दी, और एक वो लिबनान की के नौजवान, उसमें शिया भी थे, उसमें सुन्नी भी थे, उसमें अलवी भी थे, और उसमें ज़ाहिर है कि वहाँ इतना शिया सुन्नी की तफरीक नहीं थे, सब लोग मिलकर रहा करते थे। जब देखा कि दहशतगर्द ऐसा है, वह कि खुद सुन्नियों के ख़वातीन को उन्होंने रेप किया, उनके गले काटे, उनको ज़बर किया, तब उनको उनकी आँखें उनके करी कभी और सफाकाना इकदाम जो थे, वो खुद उनके लिए आई ओपनर थे कि ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे वो लोग जो ट्रैप में आ गए थे शिया सुन्नी को, वो निकल गए फौरन, और फिर एक ऐसी आ रहा कि इनसे मुकावमत किया और इस वक्त इनको नाकू चने चबवा दिया, और ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई है कि मगरिब अब अपने ज़ख्म चाट रहा है और उनके जो इत्तेहादी अलाई। तो ये दाइश वहाँ से नाकाम हो करके, और ये टेरर कैंपेन जो है मगरिब का, ये उसका एक इंटेग्रल पार्ट है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, किसकी, वेस्ट की, और वेस्ट के जो क्या कहते हैं लोकल अलाइज हैं, यानी रीजनल अलाइज हैं मशरिक वस्ता में, जो उसके रजत पसंद शहनशाहियत के जो परस्तार हैं और जो आलमबरदार हैं, उनकी उनके ये अलाई हैं, ये उनके ग़ुलाम हैं, अलाई क्या ग़ुलाम कहिए, ये सऊदी अरब, ये कतर, ये इमारात, ये कुवैत, ये जॉर्डन, उर्दन, ये सब, ये इसके मुतलिक साफ वाज़ेह है कि दाइश कौन है, अब्दुलरहमान फैसल, जो सऊद अल फैसल जो वज़ीर ख़ारजा है, उसका भाई है, उसके ज़ेर सरपरस्ती दाइश को, यानी अलकायदा और जेबुन नसरा की नाकामी के बाद, फिर उसको उर्दन में बाबता एक ट्रेनिंग कैंप तैयार की गई, जिसकी सपोर्ट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश अल्फाज दीगर आप कह लिए कि नेटो ममालिक कर रहे थे, उर्दन में ये इनकी काम किया, वहाँ से इनको तैयार किया गया कि, और जिबुन नसरा और वो तो इराक़ के लिए मखसूस थे, फ्री सीरियन आर्मी, और यहाँ इनको इराक़ में लगाए, वो शाम के लिए थे, यहाँ इनको इराक़ के लिए, और जैसे ही इराक में शिकस्त हुई, दाइश को मजीद ये कर दिया गया। अमरीका एक इंतहाई, और अमरीका के जो भी मगरबी इत्तेहादी हैं और चाहे वो रीजनल मशरक़ वस्ता है, इंतहाई मुनाफिक है बज़ाहिर। खैर ये तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको और दीगर तरीक़े से भी सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर। लेकिन अमरीका इस वक्त दहशत गर्दों कहता है कि हम दहशत गर्दी के सख्त मुखालिफ हैं, और उसकी वजह से, और इराक़ को अपना दोस्त मुल्क बताता है और कहता है कि हम इराक में बिल्कुल उसकी इसको हेल्प के लिए आएंगे इन दहशत। अरे भाई, अगर इराक को इन दहशत गर्दों से पाक करना है तो तुम सबसे पहले सऊदी अरब, कतर और क्या कहते हैं तुर्की और कुवैत और उर्दन, जहाँ से सब कुछ हो रहा है, उन पर एक दबाव डालो। ये तुम्हारे ज़ेरे असर हैं, ये इसकी ताब नहीं रखते हैं कि तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी करें, इनके अंदर इतनी जुरत नहीं है, इनके अंदर इतनी तवानाई नहीं है, तुम उनको रोक दो। लेकिन ये है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि होशियार ज़िबारी अभी जद्दा के दौरे पर थे सऊदी अरब के, तो उन्होंने फॉर्मली कहा कि हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है कि ये जो बैजी इलाका है तिकरीत के करीब, जहां आयल रिफानी पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था दहशतगर्दों ने, तो कहा भी कि इसको छुड़वाने में आप हमारी मदद करें। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई ये क्या हुआ, इराक़ ने ये किया है। तो मसला ये था कि ये उसके दावे की कलई इससे खुल गई, यानी अमरीका को आना था अगर इतना ही ज़्यादा ये, लेकिन उसकी मुनाफ़त भी खुल गई। अमरीका तो उसकी सपोर्ट कर रहा है ना दर पर्दा भाई, मान लें वो चाह रहा था कि हम इराक़ में इस तरीके से कुछ फ़ौज लाएँ कि दिन में उनके ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई दिखाएं झूठ मूठ का, और साथ साथ दाइश को मुसल्ले भी करते रहें जदीद से जदीद, ताकि इस तरीके से इराकी आर्मी एंगेज उनसे रहे। तो कहा गया चलिए भाई ट्रूप्स तो नहीं भेजेंगे, इसके लिए नहीं तैयार, तो आप ऐसा कीजिए कि एयर स्ट्राइक कीजिए। और उसके लिए उन्होंने कहा हम भेज भी रहे हैं, भेज भी दिया। लेकिन अभी तक यानी 3-4 रोज़ गुजर गए, अभी तक कोई एयर स्ट्राइक दाइश पर नहीं हुआ है। 2-4 जहाज़ परवाज़ें की हैं, लेकिन अभी तक तो खुद असल मसला ये है कि ये पॉलिसी सरासर मुनाफ़त पर मबनी है, ये हाइपोक्राइसी पर मबनी है, मुनाफ़त पर। अमरीका दरअसल चाहता है कि उनको पसे पर्दा मदद फराहम करें ताकि इराकी आर्मी इंगेज हो जाए, और वो उनकी चाहता है कि उनकी बालादस्ती हो, और बाद में हम इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस है कि हम इनसे तो अपना इख्तदार ले लेंगे, कोई मसला नहीं। और अब ये देखिए कि अब कांग्रेस ने ये बात भी लें कि नूर मालकी को जाना चाहिए। भाई भाई नूर मालकी को क्या आपसे क्यों जाना चाहिए, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्यों नूर मालकी को जाना चाहिए, आप कौन होते हैं। बिल आखिर वो कांग्रेस के उसको बहरहाल आप कल आज ही ओबामा ने कहा है कि भाई दैट इज़ नॉट आवर जॉब टू चूज़ द लीडर ऑफ इराक, है ना, ये हमारा जो हमारी जॉब नहीं, हमारा हेडेक नहीं कि हम इराक के रहनुमा का इंतखाब करें। ये बहरहाल उन्होंने उसके मुकाबले में एक बयान देकर के इसको ठंडा किया, इसलिए कि दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हम हर तरह की मदद दे रहे हैं, जब भी इराक रिक्वेस्ट करेगा हम हर तरह की मदद देने के, लेकिन साथ ही ईरानी कायदीन ने, ईरानी हुकूमत ने, सब ने यही कहा है कि इराकी फ़ौज और इराकी अवाम खुद इतनी अहलतर है, इतनी कैपेबल है कि उसको ज़रूरत नहीं है हमारी मदद की। वही शाह इस वक्त इस दाइश ग्रोह के मुकाबले जो सूरत हाल पैदा हुई है कि इराकी अवाम खा वो सुन्नी हों शिया हों, हर तबके से जूख दर जूख, यानी कि अपने सबते नाम कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ौज में आ रहे हैं। लाखों लोगों का एक हजूम है कि किसको लिया जाए किसको नहीं लिया, ये एक मुश्किल मसला खड़ा हो गया। इस कदर मराजे उज़ाम में, यानी कि उलमाए कराम ने, यानी मराजे उज़ाम में से आयतुल्ला सिस्तानी ने खुल करके फतवा दिया और दीगर लोगों ने भी फतवा दिया। फिर उलमाए इराक के उलमाए कराम में से बिलखसूस शिया उलमाए कराम ने लिबास रज़्म पहन लिया, वो यानी आर्मी ड्रेस पहन कर आए, मसलन अम्मार हकीम खुद आर्मी ड्रेस और गन चलाया, और ऐसे बहुत ऐसे रूहानियों और मुअम्मम उलमा ने जो बिल्कुल अभी बिल्कुल उम्र के अजीमन, तो इस तरीके से उन्होंने इराक को, तो ये दाइश ग्रो के ज़रिया जो चाह रहा है अमेरिका और उसके हरीफ सऊदी अरब के जो वो जो शुरू हुआ था, एक एक जुम्बश शुरू हुई थी, एक तहरीक शुरू हुई थी, और वो जो एक मादी कदरों पर मबनी एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो का जो रोब दबदबा था, वो जो शुरू हुआ था वो अब बिल्कुल नाकाम, अपनी आखिरी टिमटिमादत चिराग है इस वक्त। और दाइश ग्रोह की सूरत में, इस्लामी इंतहा पसंदी की सूरत में, इस्लामी दहशतगर्दाना एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें, इस्लाम में एक इस्लाम के बिल्क से बिल्कुल मुतसादिम दहशतगर्दाना विजन को ईजाद करने की सूरत में जो साजिशें इस्तेमाल करना, वो नाकाम हो जाएंगी। और नाकामी इसका मुकद्दर है, ये अमेरिका को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अब तक के तजुर्बे से कुछ नहीं हुआ, जब से ईरान का इनकलाब है उसने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, डेलिकेट, बहुत ही के अब की बार ये पॉलिसी हमारे यहाँ। लेकिन हर पॉलिसी का मुकद्दर इंतहाई जिल्लत आमेज नाकामी की सूरत में निकला, ख्वा वो इराक की मुसलत करदा जंग हो, ख्वा वो तबस का वाकया हो, ख्वा वो शाम का वाकया हो, ख्वा वो शिया सुन्नी दुनिया में शिया सुन्नी को लड़ा देने का की साजिश हो, ये सारी नाकामी सुन पाकिस्तान और ये समझना चाहिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी बिल्कुल इस हवाले से बर सगीर में भी, कि उन्होंने देख लिया, उनका भी ये तजुर्बा है कि तालिबान और अलकायदा ग्रोह ने ख़ुद पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर दी, खुद अफ़गानिस्तान को किस नहज पर ले गए, स्टोन ने उसके खंडर में बना दिया अफ़गानिस्तान को, और पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं। अब ये कंसेंसस पैदा हो गया है कि इस किस्म के दहशत ग्रोह गर्द ग्रोह की हौसला अफजाई पाकिस्तान के हरगिज़ मुफाद में नहीं है, ना पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में। और ये यकीन है कि अगर इस बात को हुक्मरान तबका समझता है कि ये हमारे मुफाद में है तो वो भी समझ जी, एक दिन आएगा कि अमेरिका के किसी मुकाम पर रुकता नहीं है। ये देखिएगा कि जब देखेगा कि अमेरिका नहीं, तो एक दिन बराह रास्त वो कहेगा इन सबको, कहा कि तुम सब नाकारे हो, तुम सब हटो, चाहे वो अरब के शहनशाही हुकूमत, और ख़ुद एक दूसरे तरीके से इन पर ये करेगा, जैसा सद्दाम को किया। भाई सद्दाम से उसने कितना काम लिया, 8 साल तक ईरान से लड़वाया उसको, और मुख्तलिफ तरह तरह की बर्बरियत और जुल्म और सफाकियत, हत्ता के इराक की शिया आबादी को उससे कत्ले आम करवाया, और सब कुछ करवाने के बाद फिर उसके खिलाफ क्या किया, उसको बिलाखिर उसको जहन्नम रसीद करने वाला भी अमरीका है। तो ये ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को समझना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के रूलिंग एलिट्स हों, चाहे वो बर सगीर के इस्लामी दूसरे, चाहे मशरक़ वस्ता के इस्लामी ममालिक के हों, कि अमरीका किसी भी थे, और ये उनको हमसे ज़्यादा मालूम है, इसलिए कि उनका दिन रात तजुर्बा है, उनका पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, हर चीज़ पर उनकी बातचीत होती है, मुआहदात होते हैं, उसमें जो अमरीका करा उनको खुद इस बात की मालूम। सिर्फ एक यानी कि इंसान को एक बार जुरत करना चाहिए, और फिर जबकि हमारे पड़ोस में एक इनकलाब आया इस्लाम के नाम पर, और एक इंतहाई इलाही शख्सियत थी, और उस तमाम तर हमारा मुल्क तमाम तर अमरीका के साथ हमकारी करते हुए इनकलाब के साथ उस तरीके से उन्होंने दोस्ताना रवैया ने, इसके बावजूद उस इनकलाब का, उस मुल्क का जो हमारे मुल्क के साथ जो तहमुल का रवैया रहा है, जो दोस्ताना और इस्लामी, उसको समझना चाहिए, उसकी कदर कीमत को समझना चाहिए, उसकी कदरदानी करनी चाहिए। और सही बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान अगर एक पेज पर एक विजन के साथ आ जाएं, तो यकीन मानिए कि कभी भी इस्तेमारी ताकतें इस खित्ते में अपने पैर नहीं जमा सकती हैं। और ये खुदा ने खुद इस इलाके को यानी कुदरती वसाइल से भी मालामाल किया है, बेशुमार इंसानी सलाहियतें यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की जो सलाहियतें वो भी इस खित्ते में बहुत पाई जाती हैं। देखिए ना, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क छोटा सा है, लेकिन आप देखिए जो हमारे यहाँ कुदरती वसाइल हैं, जो फसलें हैं, जो फल हैं, जितनी लहलहाती फसलें हमारे यहाँ, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वो इंडिया के मुल्क। फिर यहाँ के काश्तकारों का जो हुस्न सलीका है ज़मीन का, फिर यहाँ जो अगर आप चलें मिलिट्री इसमें ले ली कि चाहे वो हमारी फजाइया हो, चाहे वो हमारी बर्री फौज हो, चाहे हमारी बहुत ही यानी कि वेल ट्रेंड, और चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ही वेल ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसके मुकाबले में लेकिन वजह फ़र्क क्या, फ़र्क विजन का है। आप एक ऐसे इस्लाम और एक ऐसे मुल्क से मरबूत हैं, दोस्ती हैं, उनसे दिली हमदिली रखते हैं जो वही खवारिज वाला नुक्ता नज़र, सऊदी अरब, अरब इमारात, कुवैत, ये इनसे अगर आपकी हमकारी रही है यानी दुनिया की सियासत के हवाले से दुनिया के, और इनसे आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान को किसी ऐसे इस पर ले आए, तो ये एक ख्याल खाम है, एक विशफुल थिंकिंग है जो अब तक विशफुल थिंकिंग ही साबित हुआ है। आप मजीद जलील और रुस्वा हुए हैं अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद। जो गुरु यानी मैंने कहा ना कि इस्लामी तहरीकें जो काफ़ी तवानाइयाँ रखती थी हर दो, मानवी भी और मादी भी, लेकिन वो बड़ी इस्तेमार ने उनको बड़ी बुरी तरह आइसोलेट करके छोड़ दिया, नाकाम करके छोड़ दिया, इसलिए कि उनके विजन में वो हकीकी इस्लाम की रमक नहीं थी। वो उमवी इस्लाम की से अगरचे बज़ाहिर उन्होंने नफरत की, लेकिन उमवी इस्लाम ने जो एक इस्लाम का तसव्वुर परवान चढ़ाया था उसको उन्होंने अपने अंदर जगह दी, तो उसका अंजाम ये हुआ। तो अगर कोई मुल्क अपने सतह पर ऐसे लोगों से जो सरासर उमवी इस्लाम उमवी ख़ानदान की गोया के मानवीय औलाद हैं, यहाँ सऊदी अरब की सूरत में, कुवैत की सूरत में, अगर हम पाकिस्तान जैसा टैलेंटेड मुल्क उनसे हमकारी करेगा और ईरान से अपने आप को दूर रखेगा, तो इसके नतीजे में सीधी सी बात है, एक आकिलाना बात है, ये किसी तासुब की बात नहीं है, ये एक मुखलिसाना मशवरा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान कोई नेक नाम होकर नहीं, उससे अलग होकर के आपको कोई अजमत हो, इसलिए कि उन्होंने एक बहुत ही इखलास की बुनियाद पर, कुर्बानियों की बुनियाद पर, इस्लाम की हकीकी रविश पर अमल करके उन्होंने, चुनांचे इराक इस वक्त कितनी मुश्किल में है और देखिएगा किस तरीके से जिल्लत पसपाई होती है। ये तो अभी ना आपको कल उन्होंने तलाफर को आज़ाद करा लिया, उन्होंने ये बैजी में जो आयल रिफाइनरी है उसको आज़ाद करा लिया, मूसल को भी आज़ाद कराएंगे, एक एक इलाके को आज़ाद, और इराक की आर्मी सीरियन आर्मी की तरफ से भी ज़्यादा मजबूत होकर निकालेंगे। फिर एक खत्ते में ये इराकी आर्मी, शाम की आर्मी, हिजबुल्ला की आर्मी एक मानी रखेगी, ये आपके फितरी हलीफ होंगे, फितरी दोस्त होंगे इस्लाम के दोस्त। चुनांचे ये ज़रूरी है कि ख़ुद पाकिस्तान भी इस वक्त मुश्किल से दोचार है और पाकिस्तान की फ़ौज भी इस वक्त इन्हीं तकफीरियों से नबरदाजमा है और इंगेज है। हाँ, और सही बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी अगर अपने नुक्ते नज़र और विज़न को चेंज कर ले तो इंडिया इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया इस बात पर मजबूर होगा कि डिप्लोमेटिकली भी इसके ज़ेर असर आए और मिलिट्री रोक दबा भी पाकिस्तान को कबूल करे। ऐसा नहीं है, बहुत सलाहियत है, वो चीज़ जो होनी चाहिए इंडिया में ना, उनके पास बेशुमार मसाइल हैं कादे, लेकिन उन्होंने बहरहाल उनके फ़र्क यह है कि इंडिया के पास कोई यानी कि सल्फी और तकफीरी नुक्ते नज़र से नहीं, उस जिसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। इंडिया अगर किसी सल्फी और तकफीरी नुक्ते नज़र का हामिल होता तो कब का टूट चुका था अपनी हमाकतों के अंदर, लेकिन उसने बहरहाल उसे, और जाहिर है कि ये जो अब जो इंडिया में ये दहशतगर्दाना सोच उभरी है कुछ पिछले दहाइयों से, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, इसका नुकसान होगा, लेकिन वो खुद बीजेपी वाले भी इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनके अंदर सुन। चुनांचे हम अगर इन तकफीरी सोच से, ये इंतहा पसंदाना विजन से, ऐसे लोगों से जो खारजी इस्लाम में खारजी विजन के सरपरस्त हैं और अलमबरदार हैं मौजूदा दौर में, यानी सऊदी अरब और इस तरह की दीगर रजत पसंद मशरिक़ वस्ता की रजत पसंद, उनसे अगर हम अपने दामन कश हो जाएं, उनसे अगर हम और ऐसे विजन पर जो इस्लाम का हकीकी विजन है इसकी तरफ हम मायल हों, जो आपको नहीं मजबूर करता है कि आप सुन्नी से शिया हों, लेकिन ये कि एक आकिलाना रविश अख्तियार करें, इस्लाम के मुफादात को ओवरऑल मुसलमानों के मुफाद को दें, किस तरीके से दुनिया में सिफारतकारी की जाती है, किस तरीके से मुकावमत किया जाता है, कहाँ सिफारतकारी की ज़रूरत पेश आती है, कहाँ। ये तो वो इस्लाम बताएगा जिसके अइम्मा ने कहा कि अइम्मा की इत्तबा करो, अगर वो सुलह करें तो सुलह करो, अगर वो क़याम करें तो क़याम करो, है ना। ये इम्तियाज़ करना एक बहुत ही बार, ये मामूली लोगों का काम नहीं होता है, ये इलाही फ़िक्र से आरास्ता लोगों का काम होता है। ये अगर इसमें कोई दुनिया प्रस्त है तो वो ज़रूर धोखा खाएगा, इस्तेमार से फरेब खाएगा। चुनांचा ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों ने फरेब खाया, खुद पाकिस्तान ने फरेब खाया, और ये मुल्क दो लख्त हुआ, इसलिए कि इनके कायदीन के पास वो इलाही विजन नहीं था। जो लोग यानी कि तकरीरें इनके कर रहे थे कि टूट पड़ो दुश्मनों कुफार पर लश्कर जर्रार बन करके, वो खुद उस वक्त शराब की में धुत थे, वो इलाही नुक्ते नज़र नहीं था। चाचा इंसान को उस इलाही फिक्र से और इलाही क़यादत से, मतलब किसी मुल्क को कोई पाकिस्तान जैसा यानी तवानाइयों और ज़र्फियत से मालामाल कुल हो जाए तो दुनिया में तहलका मचा दे। इसलिए कि फिर वो अदालत होगा, फिर जंगजुई नहीं होगी, सफाकियत नहीं होगी बेकसूरों पर। आज खुद हमारे मुल्क में बेकसूरों के जान माज एक किसी पॉलिटिकल एजेंडे को यानी प्रोमोट करना होता है तो हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि बेकसूरों की इसमें 4000 जान चले जाएँ, 5000 चले जाएँ, किसी कोल्ड स्टोरेज में लोग जल जाएँ, मर जाएँ, कहीं गोली चला करके मार दो किसी मखसूस बंदे के, इसकी कोई परवाह। ये सफाकियत है, ये सफाकियत है। इस्लाम जो है मासूमे के जान की, कोई भी ईरान अपने आप को इस बात का ज़िम्मेदार समझता है, ईरान की इस्लामी हुकूमत कहीं जाए तो इस बात की पूरी कोशिश कर। चुनांचे अहमदी नजाद के ज़माने में जब मालिक रीगी को पकड़ा तो उन्होंने ईरान का, तुमने एक ओसामा बिन लादन को पकड़ने के लिए लाखों आदमी मार दिया और ओसामा बिन, लेकिन हमने मालिक रीगी को जो असल दुश्मन है उसको बगैर किसी जानी नुकसान के लोग पकड़ के दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया ना कि ये मिसाल है कि इस तरीके से पकड़ा जाता है सरगना को। चुनांचे ये दाइश की फिक्र जो है, ये दाइश की फिक्र ही आई है इस्तेमार और इस्तेमार के जो यानी के इलाकाई इत्तेहादी हैं, जो रीजनल उसके अलाइज हैं, रजत पसंद शाही हुकूमतें जो यानी इस्लाम का लिबाद नाम लेकर खादिमुल हरमैन शरीफैन बनकर दरअसल इस्लामी कदरों के, इस्लाम की हकीकी शख्सियात के दुश्मन हैं, उनसे अगर आप अपने आप को मरबूत और वाबिस्ता रहेंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं होगी। चुनांचा इराक़ में कामयाबी के और दाश की नाबूदी के पूरे इम्कानात में, और आप कुछ ही दिनों में ये खुशखबरी सुनेंगे कि किस तरीके से ये वहाँ भी नाकाम होंगे। तो अगर हम भी चाहते हैं कि इस तरह के ग्रोह को नाकाम, हम भी चाहते हैं अगर हमारे माशरे में हमारा मुल्क सरफराज हो दुनिया में और हमारे मुल्क में इस तरह की सफाकियत ना पाई जाए, इस्लाम के नाम पर इस तरीके से कत्लेआम, ज़बल, बेकसूर लोगों की टारगेट किलिंग, तो ज़रूरी है कि इस्लाम का सही विजन से और इस्लाम के सही विजन रखने वालों से हम मरबूत हों। ये अवाम के लिए भी इस्लाम का यही पैगाम है और इस्लामी हुक्मरानों के लिए भी यही पैगाम है, इस्लामी पॉलिटी के लिए भी यही पैगाम है, इस्लामिक पॉलिटिकल किसी हुकूमत के लिए भी यही प्रोग्राम है, इस्लाम के पॉलिटिशियंस के लिए भी यही पैगाम है, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी यही पैगाम है। अगर ये नहीं होगा तो फिर यही होगा। चुनांचा दाश या वो ISIL अलकायदा और तालिबान इस तरह के नुक्ते नज़र अपने यानी कि ये जो अपने दिन गिन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये पूरी दुनिया, ये खुद बकौल राबर के भी और दीगर तमाम उलमाए कराम के, ये खुद अपने पुश्त मनाहों की जानिब पड़ देंगे जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, ये खुद अपने पुश्त मनाहों की जानिब पड़ देंगे और उनके लिए दुश्वारी पैदा करेंगे। उस वक्त ये चीखेंगे, लेकिन खुद ये अपने एक दिन आया कि क्या था कि ईरान के ख़िलाफ़ जब सद्दाम लड़े थे तो यही सऊदी अरब ने दहाने खोल दिए थे, कोई इतने उनके लिए पूरे दहाने खोल दिए थे, क्या हुआ फौरन ही कोई की तरफ ये सद्दाम पलटा। उसके ऐसे ये सबको फिक्र हो गई कि भाई ये तो सद्दाम दहशतगर्द है और सद्दाम ये है सारे मुखर, लेकिन क्या उस वक्त जो कुछ ये ईरान के साथ कर रहा था तो उस वक्त उनको फिक्र नहीं हुई थी। तो जो सद्दाम ने किया वही ये दाइश भी करेंगे, यही ये माहरूज़ात थी चंद इस हवाले से।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جی 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 نہیں نہیں انڈائریکٹلی کیسے کہا نہیں میں نے وہ تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا کہ وہ ان کو آزمانے کے لیے کہ ان کے اندر کتنا اخلاص ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عراق ان کا دوست ملک ہے عراق ان کا دوست ملک ہے تو آئیں وہ دوست ملک کی مشکل میں مدد کریں داعش اس وقت جس کے لیے جس پر عمل کرتے ہوئے زیباری نے خود جدہ میں اس بات کہا کہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے اور پھر انہوں نے اپنا یہ بھی بھیجا لیکن ابھی تک میں نے بتایا کہ انہوں نے نہیں کیا ہے داعش کو وہ اگر کر دیں تو گویا ہم یہ سمجھیں گے کہ امریکہ اب منافقت سے کام لے اپنی وہ لیکن ابھی تک انہوں نے داعش کے معاملے میں جو جس سستی کا مظاہرہ کیا اور ابھی تک کوئی اٹیک نہیں کیا داعش پر تو یعنی کہ ایک دوست ملک کی اگر آپ بہت زیادہ امریکہ کہتا ہے نا کہ عراق ہمارا دوست ملک ہے اور ہاں اور ہمارا الائی ہے بہترین اور یہ کہ تو آئے ایران نے اور یہ بھی سیاست کہا کہ ہم سب ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں لیکن بشرطے کہ عراق کی حکومت ہم سے اس پر دوسری بات اس بات کی تردید کی ہے کہ عراق کے معاملے پر تمام حکومت نے بھی حسن یعنی روحانی صدر روحانی بھی نے ارتش اسلامی ارتش جو ہے ایران کی جو فوج ہے آرمی کے چیف جو ہیں وہ حسن فیروز آبادی نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ عراق کے معاملے میں ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے البتہ یہ امت کی خبر ضرور لگتی ہے کہ امت تو جس ویو کا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ بھائی یہ انہوں نے بالا کہ ایران ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ ہمکاری کر رہا ہے یہ ایک ویوز اٹھا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران کی حکیمانہ پالیسی کو قبول کیا جائے اور اس کے تحت چلا جائے تاکہ ہم استعماری چالوں سے محفوظ رہیں جنہوں نے ہم استعماری پالیسی پر عمل کرتے رہے اور ایران کا ساتھ نہیں دیا اور جب ان کو ہنسی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں یعنی کہ افغانستان کے معاملے میں طالبان اس لیے شکست کھا گئے کہ ایران اور امریکہ ایک پیج پر ہو گئے بھائی تو جب ایران اور پاکستان ایک پیج پر تھے ایران اور سعودی عرب اس پیج پر تھے تو اس وقت آپ ان کو کامیابی دلا دیتے جب طالبان اور یہ تھے سب ایک پیج پر تھے تو اس وقت کامیابی حاصل کر لیتے نا تو یہ اپنے ایک شکست خوردگی کے عالم میں جو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تو وہ تو ایک بات انہوں نے ایک پولیٹیکل کہ تم بہت زیادہ ہمدرد بنتے ہو تو آؤ بھائی اس وقت داعش آ کر کے یہ کیسے ممکن ہوا کہ داعش عراق میں گھس گئے تمہارے عراق کے ایک بہت ہی تم دعویٰ کرتے ہو کہ عراق ہمارا ایک دوست ملک ہے نا نور المالکی تمہارے بہت ہی دوست اب ایک بہت دوست اپنا لیڈر کہتے ہیں نا امریکہ اب اس وقت کانگریس میں یہ بات آئی کہ نہیں صاحب نور المالکی ہٹیں تو پھر ہم یہ کریں گے ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا وہاں کی کانگریس نے بھائی نور المالکی سے آپ کو کیا شکایت ہے وہی کہ بشار الاسد کو ہمارا ہٹانا مقصد ہے اب نور المالکی کے پیچھے پڑ جائیے تاکہ کسی طریقے سے بہانہ بنے کہ داعش کو پھر دیں کہ بھائی نور المالکی کو ہٹنا چاہیے وہ تو چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب یہ چال نہیں چلے گی تو یہ اوباما کی اپنی پرسنل یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ کانگریس کے اس موقف کے بالکل برعکس موقف تھا اس نے کہا کہ بھائی ہاں ہماری جاب نہیں ہے کہ ہم وہاں کے لیڈر کا تعین کریں چنانچہ فوراً اس نے پس پائے ورنہ یہی ہوتا کہ کانگریس یہ چاہ رہی تھی کہ پھر نور المالکی کو ہٹانے کے لیے ہم جواز بنائیں کہ داعش کریں تو ہٹائیں نا نور المالکی جیسے آدمی قابض ہیں حالانکہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اب عراق میں ہی وہی بشار الاسد والا لاتے تو یہ صورتحال ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس بیان پر جو مختلف اداروں نے ایران کے اہم اداروں نے دیا ہے کہ عراق کے معاملے میں ہماری کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے امریکہ سے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ عراقی آرمی اور عراقی عوام خود اس بات کے کیپیبل ہیں کہ وہ داعش گروہ کا اور آئی ایس آئی جیسے گروہوں کا مقابلہ کریں
किसका
इराक की जानिब बहुत जिस वक्त इराक जिस वक्त डिसमेंटल हुई है सद्दाम की हुकूमत आप उस वक्त देखिए कि किस कदर पिनट्रेशन थी अमेरिका की इसराइल की। अब उसमें वहाँ के मराजे ने बहुत ही मेरा ख्याल है कि बहुत ही रिजनेबल अप्रोच है, हर चीज़ की एक मरहला वाइज होता है, ग्रेजुअली होती है हर चीज़। उस वक्त की जो सूरत हाल थी उस वक्त रहबर मुअज़्ज़म ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि मुझे उम्मीद है कि इराक के नौजवान अहले बैत अतहार की जो रविश है उसको अपना मॉडल बनाएंगे और आपस में इस तरीके से जिस तरीके से इस्तेमार उनको उलझा कर लड़ाना चाहता है वो नहीं थे। उस वक्त फर्स्ट स्टेटमेंट जो था रहबर का ये था और जाहिर है कि रहबर ने जो एक स्टेटमेंट थे ग्रेजुअली सिचुएशन उसी तरफ बढ़ी और वहाँ के मराजे ने भी इसमें, लेकिन जाहिर है कि एक मल्टी यानी कि सेक्टेरियन मुल्क था वो, मतलब कि जाहिर है कि उसमें कुर्द भी थे, उसमें अहले सुन्नत भी थे, उसमें शियों की अक्सरियत थी। अव्वल तो दुनिया में ये बात यानी वेस्टर्न मीडिया के मतलब कि लोग समझते नहीं थे कि इराक में शियों की अक्सरियत भी थी, यानी सद्दाम की डिसमेंटलिंग से पहले उसके सकूत से पहले अच्छे शियों को ये बात मालूम नहीं थी कि वहाँ अक्सरियत है। सही बात है कि मैं उस ज़माने में मेरी मुलाकात रहती थी हमारे किसी वजह से प्रोफेसर गफूर साहब से, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि राशिद मुझे एक चैनल पर जियो पर या किसी पर बुलाना चाहिए इराक के मुतल्लिक, वो मुझसे इंटरव्यू करेंगे तो कुछ इराक के मुतल्लिक मुझे कुछ ब्रीफिंग दो। तो मैंने उनको लिख के दिया कि वहाँ की आबादी का रेशियो क्या है, तो उन्होंने ताज्जुब किया कि क्या इराक में अक्सरियत है शियों की। अब गफूर जैसा साहब जैसा कोई मामूली लीडर तो नहीं था, एक बहुत ही अजीम पॉलिटिकल लीडर था पाकिस्तान की पॉलिटी का, पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत ही यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक अच्छे मशहूर है। लेकिन वो जब इस पर हैरत का इजहार, तो आम सुन्नी आबादी आप समझ सकते हैं कि कितनी लाइल्म होगी इस हकीकत से, तो बहरन के बारे में भी ऐसे ही। तो ये तो देखिए उस वक्त जो जो कुछ मराजे ने फैसला किया था और था वो उस वक्त की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। आप उस वक्त कोई एक हर चीज़ हमारे मराजे जो है ना या हमारे जो रहबरान हैं वो अहले बैत से मरबूत होते हैं, उनका विजन एक बिल्कुल मुख्तलिफ विजन होता है। वो किसी नामुनासिब मौके पर यानी कि एक दफली अलग से ऐसी नहीं बजाते हैं जो हालात से कोई मुताबकत ही न रखता हो, बल्कि बहुत ही हकीमाना होता है, बहुत ही वेल थॉट आउट होता है, बड़ा ही स्टेप उनका बहुत ही जो है वेल थॉट आउट भी होता है और बड़ा ही क्या कहते सोच समझ कर फूंका कदम होता है। तो हमें मतलब अपने उलमा पर अपने मराजे पर इसीलिए नाज है कि वो बहुत ही होशियारी से, और देखिए बतदरीज कैसी सूरत हाल कि आज वो चीज़ एक अवामी जो है वो एक फौज एक वही सूरत हाल पैदा हुई मरजे की कि आज सुन्नी शिया और तमाम लोग मराजे कहने पर एक फौज हैं। लेकिन उस ज़माने में आयतुल्ला सिस्तानी की अक्सरियत जो है वो उस वक्त किसको यानी कि इमाम क्या कहते हैं आयतुल्ला सिस्तानी ने बड़ी मुश्किल से उस वक्त लंदन से अपने हॉस्पिटल से आ करके वो क्लैश जो होने जा रहा था मुक्तदा सदर और इसमें शियों में बाहमी उसको रोक दिया था और ये इस्तेमार कामयाब हो जाता अगर। और रफ्ता रफ्ता आप देखिए कि सभी एक तरफ, अब ना कोई आयतुल्ला सिस्तानी और मुक्तदा सदर की चपकली से, वरना उस वक्त के मैगजीन को देखिए बड़े बड़े होते थे टाइम मैगजीन और न्यूज़वीक, ये बड़े बड़े होते थे आयतुल्ला सिस्तानी और तो। लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात हमेशा वहदत की तरफ और मरजियत की तरफ जा रहे हैं। फिर मरजियत के जेर साया अगर कोई निज़ाम होगा तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई गैर इस्लामी निज़ाम होगा, वह ऐन इस्लाम होगा। तो हमारी सिचुएशन इस्लाम ही की तरफ बढ़ रही है। असल में देखिए कत्ल व गारत गरी तो आयतुल्ला सिस्तानी की वजह से नहीं हो रही है। कत्ल व गारत गरी तो जहाँ भी हो रही है, दुनिया में कहीं भी हो रही है, तो वो तो इस्तेमार की अपनी रेशदवा ने। अब हमारे लोग दो लोग हैं, एक तो यह है कि सिरे से वो इमाम खुमैनी के इनकलाब से कोई आग ही नहीं रखते हैं, एक हमारी अदम मार्फत इस सूरत में अदम आगही की सूरत में है, और एक हमारी अदम गही मार्फत के नाम पर है। मार्फत के नाम पर यह कि आयतुल्ला सिस्तानी फौरन हम जो अपने आप को एक इनकलाबी नौजवान की हैसियत से पोज कर सकते हैं, और हमारी एक बिल्कुल अभी टेंडर प्री मैच्योर सोच है, वो चाहते हैं कि मराजे जिनका दीन में डूबा वो फौरन ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि जिससे ये ऐसा नहीं है। यानी वो मराजे अपने लेवल पर समझते हैं कि क्या किसी मुल्क की, हम तो एक उसूली बात यह है कि इस्लाम में कोई जोग्राफियाई हदबंदी नहीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पे नहीं है ना ये बात। जोग्राफियाई हदबंदी है अलबत्ता, इस्लाम के ज़ेर साया जब एक मरकजियत कायम होगी तो वो रफ्ता रफ्ता वो डाइल्यूट हो जाएगी ये जोग्राफियाई सरहद। हमारी जो है एक ओवर जो इमोशनलिज्म है, एक वो इसको हम समझते हैं कि ये हमारी रिवॉल्यूशनरी फिक्र है, ये इस पर हमें नज़रसानी करना चाहिए। बल्कि अभी हम उलमा की जो सतह होती है, मराजे की जो सतह होती है, वो बहुत ही डीपर होती है, बहुत ही अमीक और गहरी होती है, और वो बोलते नहीं हैं, वो समझते हैं आपस में उनकी। तो हमें जो मुत्तकी परहेजगार मराजे उज़्मा हैं उनका एहतराम इसीलिए लाजिम है, उन पर उनसे हुस्न ज़न रखना इसीलिए लाजिम है। हालात बढ़ रहे हैं ना, आज फतवा दे रहे हैं ना आयतुल्ला अली सिस्तानी, अब इसको आप बिल्कुल ले जाते 90s के अवैल में या उस वक्त के, और उससे आप बदगुमानी के मतलब, तो ये आपकी नासमझी थी, यानी हकीकत नहीं बदली, हकीकत वही थी। इसलिए कि उस वक्त जो अप्रोच मराजे को, हकीकत एज इट इज़ आज भी वही है कि मराजे की सोच थी कि किस डगर पे लाना है, चीज़ों को ले जाना है, और वो तवस्सुल भी करते हैं, वो खुदा से उनका इक्तबात भी होता है ना, राजो न्याज भी होता है, जाय नमाज पे शब शब जिंददार लोग होते हैं, तो और इस चीज़ को दूसरे भी लोग भी समझते हैं, तो ये हकीकत वही थी आज। लेकिन वो हमारी जो है कि ओवर एक्सपेक्टेशन थी बिला वजह की, गैर ज़रूरी अननेसेसरी मराजे से।
सर लेकिन 2006 में जब अमेरिका से मुक्तदा सदर साहब की लड़ रहे थे, उस वक्त आयतुल्ला सिस्तानी ने कोई ऐसा नहीं दिया था कि इराक की हद तक जो वहाँ पर बेसिकली छोटी छोटी आबादियों में शिया सुन्नी भी थोड़े अरसे फसाद रहा था, तो आयतुल्ला सिस्तानी के जो मुकल्लिदीन थे उनके लिए आयतुल्ला सिस्तानी ने ऐसा कुछ फतवा नहीं दिया था कि जब शिया आबादियों के हमले हुए क्या मतलब दिखा रहे हैं, सीरिया की शाम की जंग में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल वॉर है, तो इसको आप कैसे बहेंगे?
चाहे वो दीनी मामला हो, सियासी मामला हो, सफारती मामला हो, डिप्लोमेटिक मामला हो, इसमें जब कोई सख्त बात कहनी होती है और इस बात का ख़तरा होता है कि उस सख्त बात से कोई इस्तेमार सुए इस्तफादा न कर ले, तो किसी छोटे लेवल के आदमी से ये बात करवाई जाती है। कभी कभी वो पैगाम पहुंचाया भी जाता है, लेकिन वो छोटे लेवल के, मतलब कोई मैसेज दिया था, कोई मसलन बहुत सख्त बयान दिया तो पहले शुरू में नहीं देते हैं रहबर कोई बयान, या कोई प्रेसिडेंट, कोई छोटे लेवल का पार्लियामेंटेरियन दे देता है, कोई किसी मुल्क का सफ़ीर दे देता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे। तो देखिए अगर वो बयान दे देते आयतुल्ला सिस्तानी तो उस वक्त एक बड़ा अजीब कोई मामूली मर्जा, उनके बड़े असरात भी होते हैं, तो उस वक्त मुक्तदा सदर कोई बहुत बड़े ये नहीं थे। मुक्तदा सदर एक तरफ वो अभी इन द मेकिंग थे, अभी उठे थे, एक नौजवान बंदे, उनका जज्बा सादिक था, ये था, और बहुत सारी गलतियां भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, आयतुल्ला सिस्तानी एक मर्जय उज़ाम में आते हैं और बहुत बड़े मर्जय तकलीद हैं, उनकी ज़ुबान से अगर, तो दुनिया खुद आवाम भी बहुत सीरियसली लेती है और दुनिया में कहा जाता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान आता। लेकिन आप देखिए कि रफ्तार रफ्तार खुद मुक्तदा सत्र भी रफ्तार रफ्तार टोन डाउन हुए, अपने आप को उन्होंने महज़ब किया इस हवाले से और मामले को बेहतरी की तरफ। तो हम ये कैसे बयान करते हैं, शिया सुन्नी अगर उस वक्त आयतुल्ला सिस्तानी की तरफ से आ जाता तो अभी तो बिल्कुल मुस्तमार चाहता ही था उस वक्त, बजाय इसके कि उसी में शिया सुन्नी की आग में झोंक देते वो पूरे इराक़ को उसमें। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि जो फिर रफ्ता रफ्ता वो ईरान भी गए हैं मुख्तसर सदर और काफ़ी उन्होंने वहाँ दिन रहे हैं, तालीम हासिल की है, फिर अब ये वक्त आया कि उन्होंने यानी कि नूरुल मालकी के साथ भी जो एक ज़माने में ये था रफ्तार रफ्तार कितना ज़्यादा कोऑपरेट किया, फिर अब ये बिल्कुल एक पेज पर आ गए हैं कि नहीं आ गए, बिल्कुल ऐसा कोई इख्तलाफ है। तो आप मराजे को अपनी हैसियत से ले लें, आप मराजे को मशवरा नहीं दें बल्कि आप मराजे उस जमाने की बात को समझें और वेट करें, किसी बात कोई बात नाकाबिले फहम भी तो वेट करें, जो इंतज़ार जो है बहुत सारी चीज़ों को दूर कर देता है।